ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा, संपर्क और संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 और इसके बाद के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच दो दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी मूलभूत और स्वाभाविक है।
भारत और यू की दो दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके मूल में लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास और प्रगति तथा समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। श्री मोदी ने बताया कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, हरित विकास, सुरक्षा, कौशल और गतिशीलता पर सहयोग के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क बढ़ाने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने बल दिया। साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद निरोध पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। उर्सुला वान डेर लेन ने कहा कि दोनों पक्ष नए रणनीतिक एजेंडे पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें आर्थिक विकास शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप से पहले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक भारत से तपेदिक टीबी रोग को खत्म करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। ओडिशा के पुरी में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छी अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने 2017 में नई स्वास्थ्य नीति अपनाने के बाद बहुत सारे सुधार हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय आधारित विकसित भारत को आकार देने में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति ने आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से बचाव कार्य में लगा हुआ है। सेना के अनुसार माणा और बद्रीनाथ के बीच सीमा सड़क संगठन के शिविर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 57 श्रमिक बर्फ में दब गए हैं। अब तक 10 लोगों को बचाया जा चुका है, बचाव अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज लगातार तीसरे दिन बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी और भूस्खलन के कारण कई जगहों पर सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। श्री किशोर ने सर्वेक्षण की विशेषताओं के बारे में कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी में जहाने खुशरो 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये समारोह इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 38वें ओवर में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विजेता टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इधर बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।